शिवी अपने घर मुंबई वापस लौट चुकी थी। उसके घर की हालत काफी खराब थी। उसके वहां आते ही सिद्धांत भी वहीं आ गया। उसे वहां देखकर शिवी काफी खुश हुई और दौड़कर उसके गले लग गई। थैंक यू सो मच सिड, शिवी उससे अलग होकर बोली, तुमने पापा का बहुत ख्याल रखा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी थैंक यू स्पीच सुनने नहीं आया हूँ, मैंने सफाई करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया, बोलते हुए सिद्धांत ने घर की हालत देखी। क्या यहाँ रहना जरूरी है? तुम मेरे साथ चल सकती हो। नहीं, मुझे यहीं रहना है, शिवी ने जवाब दिया। रुको, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम भी काम लगते हैं। शिवी सूटकेस लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, तभी सिद्धांत बोला, मैं बाहर चला जाता हूँ, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगी। शिवी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। सिद्धांत के बाहर जाते ही शिवी ने दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से कपड़े बदले। उसने ब्लू डेनिम शॉर्ट और ऊपर ब्लैक टी शर्ट पहनी थी। शगुन अपने बालों को जुड़े के रूप में बांधने लगी। यहाँ कितनी गर्मी है, वहाँ तो इस तरह के कपड़े पहनने का चांस नहीं मिलता था, बस पूरे टाइम खुद को कवर करके रखो। कपड़े चेंज करते ही वो बाहर आई और सिद्धांत के पास जाकर बोली, तुम्हारी टीम कब आने वाली है? वो बस पहुंचते ही होंगे, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सिद्धांत ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। सुबह के 10 बजने को आए थे। नहीं, मैंने फ्लाइट में काफ़ी कुछ खा लिया था और आराम भी कर चुकी हूँ, शिवी काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। हाँ, और तुम्हें तो जेट लैग भी नहीं होता। ठीक है, फिर मैं उन्हें अभी आने का बोल देता हूँ। सिद्धांत बात करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। उसने शिवी की तरफ देखा, जो घूमते हुए अपने घर को देख रही थी। इतने दिनों बाद उसे अपने सामने पाकर सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ ही देर में वहां 10 से 12 लोगों की टीम आ चुकी थी। सिद्धांत उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो वहीं शिवी भी उनके साथ कामों में जुटी थी। बीच में उन्होंने खाने पीने के लिए ब्रेक लिया और शाम के 6 बजे तक घर लगभग पूरा साफ हो चुका था। घर की इलेक्ट्रिसिटी से लेकर वाटर सप्लाई तक का पूरा इंतजाम हो चुका था। अब बस इसे कलरिंग की जरूरत है, उसके बाद ये वापस पहले जैसा हो जाएगा, सिद्धांत ने घर को देखकर कहा। नहीं, इसे पहले जैसा होने के लिए अभी और मेहनत लगने वाली है। इसे पहले जैसा बनाने के लिए मुझे पापा को बेगुनाह प्रूफ करना होगा और मम्मा को वापस उनके पास लाना होगा, शिवी ने बुझी आवाज में कहा। तुम्हारे पापा का तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी मम्मा की लाइफ डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, वो वहां खुश हैं, सिद्धांत ने शिवी को समझाने की कोशिश की। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, सबसे पहले मुझे पापा से मिलने जाना है। तुम हमारी मीटिंग कब करवाने वाले हो? बस इतनी सी बात, हम कल ही उनसे मिलने चलेंगे। चलो तुम बात ले लो, उसके बाद हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, सिद्धांत ने शिवी की तरफ देखकर कहा। सफाई करने की वजह से उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी थी। हाँ ठीक है, वैसे नहाने की जरूरत तो तुम्हें भी है, तुम ऐसा करो घर चलो, मैं थोड़ी देर में पास वाले मोहन अंकल के रेस्टोरेंट में मिलती हूँ। सिद्धांत ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवी ने अपने लिए दूसरे कपड़े निकाले और नहाने चली गई। उसने पीच कलर का ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस पहना था, उसे बाहर जाना था इसलिए उसने चेहरे पर हल्का मेकअप किया और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। तैयार होने के बाद शिवी ने आर्या को वीडियो कॉल किया। आर्या के कॉल रिसीव करते ही शिवी ने कहा, तो कैसा बीता तुम्हारा आज का दिन, तुमने मुझे मिस किया या नहीं? मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें बिल्कुल भी मेरी याद आई होगी, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो, वो भी मेरे बिना, आर्या ने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहा। बस अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने का प्लान किया है। तुम अपने पापा से मिली, उन्हें हमारे बारे में बताया या नहीं, वो ठीक है ना, आर्या ने पूछा। उसके पूछने पर शिवी को याद आया कि उसने अभी तक सिद्धांत को भी आर्या के बारे में नहीं बताया था। याद आते ही शिवी ने अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, पापा छोड़ो, मैं तो तुम्हारे बारे में अपने फ्रेंड तक को बताना भूल गई। तब तो लगता है जल्द ही मुझे तुम्हारे पास आना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम 2 हफ्तों में मुझे भी भूल जाओ, फिर मेरा क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा उलझ गई थी, बस उसी चक्कर में याद नहीं रहा। चलो मैं तुमसे आकर बात करती हूँ, अभी मुझे जाना होगा। आर्या से बात करने के बाद शिवी ने अपना बैग उठाया और वहां से पास ही के रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गई। उधर शिवी से बात करने के बाद आर्या के फोन में नोटिफिकेशन अलार्म बजा। उसे देखने के बाद उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। इतने कम टाइम में तुमने मुझे बदल कर दिया है शिवी, लेकिन इस चीज को कभी कोई नहीं बदल सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैं उस शख्स को बर्बाद कर दूंगा जिसने मेरी एली की जान ली, आर्या ने गुस्से में कहा। उसने अपना लैपटॉप लिया और पहले बुक की हुई टिकट को कैंसिल किया। उसने नई टिकट बुक की जो और भी पहले की थी। बस अब 4 दिन और रहे हैं, मैं वहां प्रेजेंट नहीं रह पाया, इसका तुमने बहुत फायदा उठा लिया, अब तुम्हें सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। टिकट बुक होने के बाद आर्या ने मिस्टर शुक्ला को मैसेज करके इंडिया आने की बात कही। वहीं मिस्टर शुक्ला के चेहरे पर वो मैसेज देखने के बाद चमक थी। वो अब तक इस बात से अनजान थे कि शिवी भी इंडिया आ चुकी है। वो इस बार मिस्टर शिव अय्यर को सजा दिलाने के लिए पूरी तैयारी कर बैठे थे। अब उन्हें अगली कोर्ट हियरिंग और आर्या के यहाँ आने का इंतजार था। डिनर करने के बाद शिवी वापस घर आ चुकी थी। सिद्धांत ने उसे अपने घर रुकने के लिए इंसिस्ट किया था, लेकिन शिवी ने मना कर दिया। वो घर पर अकेली थी, फिर भी उसे बिल्कुल भी डर या अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। आज काफी काम करने की वजह से वो थक गई थी और घर आते ही अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह शिवी की आंख खुली तो वो जल्दी जल्दी तैयार होने चली गई। आज उसे सिद्धांत के साथ अपने पापा से मिलने जाना था। वो उनसे पूरे 2 साल बाद मिल रही थी। बाहर सिद्धांत की गाड़ी का हॉर्न सुनकर शिवी ने जल्दी से बैग उठाया और तेज कदमों से चलकर बाहर आई। वो सिद्धांत के बगल वाली सीट पर बैठते हुए बोली, क्या उन्हें पता है मैं उनसे मिलने आने वाली हूँ? नहीं, अगर उन्हें पता होता तो वो मिलने से मना कर देते। मैं हियरिंग से पहले अक्सर उनसे मिलने जाता हूँ, सिद्धांत ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, देखना वो मुझे देखते ही गले लगा लेंगे। और आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैंने पापा को बहुत मिस किया। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब मैंने उनके बारे में या हमारे बीते दिनों के बारे में नहीं सोचा हो, उनके बारे में बताते हुए शिवी की आंखें नम होने लगी। हाँ, तुम्हारी एक्साइटमेंट तुम्हारी बातों और आंखों में साफ दिखाई देती है, सिद्धांत ने जवाब दिया। वो शिवी को कुछ भी बताकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। उसने एक नज़र शिवी के चेहरे की तरफ देखा जो बार बार बाहर देख रही थी। आई एम सो सॉरी शिवी, आई नो तुम्हें उनसे मिलने के बाद हर्ट होने वाला है, पर मैं तुम्हारी एक्साइटमेंट रूइन नहीं करना चाहता। वो हियरिंग से पहले मुझसे भी नहीं मिलना चाहते। आई होप वो तुम्हारे साथ रूडली बात ना करें, सिद्धांत ने अपने मन में कहा। लगभग 2 घंटे बाद शिवी सिद्धांत के साथ जेल में थी। सिद्धांत ने उनसे मिलने के लिए पहले कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर वो शिवी को लेकर आगे गया। वो दोनों एक कमरे में बैठे थे और मिस्टर शिव अय्यर के आने का इंतजार कर रहे थे।
जैसे ही वो आए, शिवी उनको देखकर हैरान थी। पहले वो काफी फिट हुआ करते थे, अब उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे की दाढ़ी भी हल्की सफेद थी और शरीर बेडौल हो चुका था। उनका पेट निकला हुआ था, वो अपनी उम्र से ज्यादा के नजर आने लगे थे। तो वहीं शिव अय्यर ने अपने सामने शिवी को देखा तो उन्होंने नजरें घुमा ली, उनकी आंखों में आंसू थे। पापा, शिवी जल्दी से उठकर उनके गले लगने के लिए बढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से उसे वहीं रुकने का इशारा किया। तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम तो अपनी माँ के साथ मुझे छोड़कर जा चुकी थी ना, अब क्या यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आई हो, या ये देखने आई हो इस जेल में रहकर मैं मर तो नहीं गया? वो जानबूझकर शिवी से रूखे तरीके से बात कर रहे थे ताकि वो यहाँ से चली जाए। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैं मम्मा के साथ नहीं जाना चाहती थी, वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गई थी, शिवी ने रुंधे गले से कहा। उसकी आंखें भर आई थीं। हाँ तो जब चली गई थी तो वापस क्यों आई हो? तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैं कह कहकर थक गया हूँ कि उस रात मैंने ही उन दोनों को मारने की कोशिश की थी। वो लड़का खुशकिस्मत था जो बच गया, शिव अय्यर चिल्लाते हुए बोल रहे थे। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शिवी ज़बरदस्ती उनके गले लग गई। पापा, आप किस मजबूरी के चलते झूठ बोल रहे हो? आपने उसे नहीं मारा है, उनसे किसने मारा है ये मैं पता लगा कर रहूंगी, शिवी ने खुद को मजबूत करके कहा। उसकी बातें सुनकर मिस्टर अय्यर ने घबराकर उसे खुद से अलग किया और चिल्लाकर कहा, देखो यहाँ से चली जाओ, तुम इन सब में मत पड़ो। मैं तो उसी दिन इन सब में पड़ गई थी जिस दिन आपने ये सब अपने सिर पर लिया था। आप लोगों के सामने कितना भी झूठ बोल सकते हो, लेकिन मेरे सामने नहीं बोल सकते हो। मान लूंगी आपने उसे मारा है, आपको यही बात मेरे सर पर हाथ रखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहनी होगी। आई स्वेयर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मुड़ कभी नहीं आऊंगी। शिवी ने अपने पापा का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया। वो उन्हें इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सारा सच कबूल कर लें। मिस्टर अय्यर ने अपना हाथ उठाया और शिवी को गले लगा लिया। वो जोर जोर से रोने लगे। इतने सालों में ये पहली बार था जब वो टूटे थे। शिवी ने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज उन्हें इस तरह टूटते देख उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। शिवी सही कह रही थी, उसका यकीन जीत गया। मिस्टर अय्यर ने उन दोनों को मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इन सब के पीछे फिर कौन हो सकता है? सिद्धांत वहां उलझन में खड़ा था। शिवी और मिस्टर अय्यर इमोशनल हो रहे थे तो वहीं सिद्धांत इन सबको प्रैक्टिकल तरीके से देख रहा था। शिवी ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और टेबल पर बिठाया। उसने उन्हें पानी पिलाया। शिवी उनके पास जमीन पर अपने घुटनों पर बैठी थी। उसने मिस्टर अय्यर का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। याद है पापा, जब भी मैं कुछ मांगती थी आप मुझे वो सब लाकर देते थे, अचानक शिवी ने कहा। शिव ने उसकी बात पर हामी सिर हिलाया। उनके हामी भरने के बाद शिवी ने कहा, ठीक है आज फिर मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, मुझे मेरे पापा वापस चाहिए और आपको हर बार की तरह मेरी ये विश भी पूरी करनी होगी। शिवी की बात सुनकर शिव ने नसरें घुमा ली। शिवी ने उनका मुंह पकड़ा और अपनी तरफ करके कहा, इस तरह नजरें चुराने से काम नहीं बनने वाला। शिवी ने अपना हाथ उठाया और अपनी अंगूठी उन्हें दिखाते हुए कहा, इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि मैंने सगाई कर ली है। मुझे अपने होने वाले हस्बैंड को अपने पापा से मिलाना है। मैं किसी भी हाल में उसे आपके पास यहाँ लेकर नहीं आऊंगी। आपको उसे हमारे घर पर मिलना होगा। मैं उसे तभी आपसे मिलाऊंगी जिस दिन आप बेगुनाह प्रूफ होंगे। अगर आपने सच नहीं बोला तो मैं कभी उससे शादी नहीं करूंगी। आप सोच लीजिए, आपको मेरी खुशियाँ चाहिए या अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। शिवी अपने तरीके से मिस्टर अय्यर को समझाने की कोशिश कर रही थी तो वहीं उसके हाथ में सगाई की अंगूठी देखकर सिद्धांत को झटका लगा। वो शिवी को बहुत चाहता था और अब उसकी जिंदगी में किसी और का आना उसके लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल साबित हो रहा था।